हरे कृष्णा। तो अभी हम गहवर कुंड के किनारे में बैठे हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, ना गर्म है ना ठंड है, ठंड हो सकता है आगे लेकिन अभी तो नहीं है। और इस समय वैसे बहुत धूप होती है, चार पांच दिन से हम देख रहे हैं, लेकिन आज का आपके लिए विशेष छत्र भगवान ने रखा है ऊपर से, एकदम ठंडा। तो जब ऐसे भक्त आते हैं भगवान उनको उत्साह देने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करते हैं। इतना सुंदर वातावरण है, इसका कैसे वर्णन करें। देखो इतनी शांति है, पेड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, मोरकुटी है एक तरफ, एक मंदिर मान मंदिर है, कदम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बहुत सुंदर वातावरण। ये हम गहवरण बन के अंदर बैठे हुए हैं। दिस इज गहवर वन मेड बाय राधा रानी हरसेल्फ। राधा रानी ने अपने हाथ से इस गहवर वन की रचना की है कृष्ण भगवान के आनंद के लिए। और फिर इस गहवर वन में राधा रानी को भगवान पुकारते हैं कि आइए आपके आनंद के लिए यहाँ पर सब व्यवस्था तैयार है, प्लीज कम। राधे जू आगे चल गहवर वन भीतर, जया जहाँ कोयल बोले, ऐसे सुंदर भजन है यहाँ पर। हरे कृष्ण। तो इस जगह पर बहुत सुंदर लीला हुई है कि बहुत बार घर में आकर जब ठाकुर जी माखन चुराते हैं तो गोपियां नई नई क्लुप्तियां चलाते हैं कैसे उनको पकड़ा जाए। और यहाँ का एक फेमस सा लीला है कि सब गोपियां हमेशा हर रोज बिना भूले नंद महाराज के दरबार में जाएंगे और यशोदा मैया को कंप्लेन करेंगे। कंप्लेंट करते हैं एक ही बहाने से कि उस बहाने से कन्हैया के दर्शन हो जाए। कंप्लेंट के बहाने कंप्लेंट करते रहेंगे, मैया इधर रहेगी और उधर देखते रहेंगे, उधर देख के मैया से बोलते रहेंगे, मतलब क्या उधर देख रहे हैं कि कन्हैया आए दर्शन हो जाए उनका। तो हमेशा कुछ बहाना ढूंढते हैं कंप्लेंट करने का। तो रोज आके कंप्लेंट करते हैं कि हमारे घर में आए, वो उधर मटका तोड़ दिया, बच्चे के कान में पानी डाल दिया, यहाँ पर लघु शंका कर दी, यहाँ पर ये किया, वहाँ पर वो किया, यहाँ पर ये चुरा लिया। तो एक दिन वो सोचते हैं, माता हमेशा बोलते रहती कि आप हमारे बालक को हमेशा कोसते रहती, आप लोग कभी उसका प्रूफ लाते नहीं हो, क्योंकि जब मैं बालक से पूछता तो मैंने वो बोलते मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ चोरी नहीं किया। अगर उनको इतना ही कहना है तो मुझे रंगे हाथ पकड़ो एक बार तो कुछ हो जाए बात। तो बार बार माता उनको ये कहती कि मेरा जो बालक है वो सब लोग तुम उसके उससे ईर्ष्या करते हो, इसलिए तुम बार बार आके कंप्लेंट करते रहते हो। अभी अगर मानना है तो मैं आपको मानूंगी, तब जाओ उसको रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ। तो ठीक है, गोपियां भी बोलती चलो कोई बात नहीं, हम भी उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। तो एक दिन यहाँ पर एक महल में वो लोग मक्खन को टांग देते हैं इसी तरह से, और सभी दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर देते हैं और एक ही दरवाज़ा ऑन रखते हैं, ओपन रखते हैं, और सब लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं चारों तरफ और वेट करते हैं कि आएंगे तो उनको झपट के पकड़ेंगे, एकदम रंगे हाथ में झपट के पकड़ेंगे। तो बहुत देर के बाद में कन्हैया, बलराम जी, सुदामा, मधुमंगल और उज्ज्वल, अर्जुन, स्तोक कृष्णा, रक्तक, ऐसे अच्छे अच्छे भगवान के दोस्त हैं, सब उसमें चोरी कला में निपुण हैं अपने नेता के साथ, सब पहुंच जाते हैं और देखते हैं बढ़िया बढ़िया मटका लगा हुआ है और बहुत पास में भी रखा है, इतना ऊंचा भी नहीं रखा है, आज अच्छा वातावरण है। तो कोई है भी नहीं साथ में, यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, तो सब मजा करेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक घंटी बांध देते हैं उधर गोपियाँ, कि जैसे मक्खन के मटके में हाथ डालेंगे तो घंटी बज जाएगी, जैसे घंटी बजेगी हम सब लोग छापक के उनको पड़ेंगे। और घंटी और ऐसा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि वृंदावन धाम में हर एक वस्तु चेतन है, हर वस्तु बात करती है, तो घंटी से भी बात करते हैं वो। घंटी से कहते हैं कि आपको बड़ी सेवा है आज, हाँ आपको जरूर बजना है, बजेंगे तो हम आएंगे उनको पकड़ेंगे। हमेशा हमको वो टोक देते हैं माता जी, और हमारा जाते हैं कंप्लेंट करने को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आज आपको हमको सहायता करना है इनको पकड़ने के लिए। तो घंटी भी लटकी हुई है मटके के साथ में, और जब कृष्ण भगवान आते हैं वो देखते हैं घंटी लटकी हुई है, तो भी घंटी से बोलते हैं तो बजना नहीं, हाँ मेरा तुम्हारा वादा है आज का, ये बजना नहीं आपको। बोले नहीं नहीं बिल्कुल भाई, मैं तो आपकी सेविका हूँ, मैं तो नहीं बजूंगी बिल्कुल। इस तरह से वो जैसे ही मटके में हाथ डालते हैं घंटी अपने आप बजती है। मतलब मटके में हाथ डालते हैं, मुंह में डालते हैं मक्खन, खाने लगते हैं सब लोग, तो तुरंत घंटी बजती है। घंटी बजते सब लोग तुरंत झपक के भगवान पर पकड़, सब गोपी ने तय करके रखा है कि कृष्ण को कौन पकड़ेगा, बलराम को कौन पकड़ेगा, सुदामा को कौन पकड़ेगा, उज्ज्वल को कौन पकड़ेगा, ऐसा सब डिसाइड किया है पूरा स्ट्रैटेजी। तो एंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन किसको पकड़ेगा, तो भाग जाएंगे ना फिर वो आपके कन्फ्यूजन के अंदर। तो रास्ता बनाइए उनके लिए, प्लीज मेक वे फॉर देम, दे मे लाइक टू गो प्लीज। हाँ अभी आएंगे तो रास्ता देना उनको, वो भी यात्री हम भी यात्री हैं, उनको रास्ता दीजिए प्लीज, मेक वे क्विक क्विक क्विक। आप भी अपना रास्ता बना के रखिए, दे विल गो। तो इस तरह से सब लोग एक एक सखा को और कृष्ण बलराम को पकड़ लेते हैं। तो कृष्ण बलराम बोलते हैं अरे घंटी तू कैसी है ऐसी घंटी, हाँ मैंने वादा किया था आपसे कि आप नहीं बजेंगी, और ऐसा है कि मैं तब तक नहीं बजी जब तक आपने मुंह में डाला नहीं उसको, क्योंकि तो जब आप कुछ खाते हैं तो आपने तो मर्यादा बना के रखी है ना कि हम मुझे बजना चाहिए, जब आप कुछ पाते हैं तो मेरा बजने का मेरा मर्यादा है, तो मैंने आपके लिए मर्यादा का पालन किया है, इसलिए मैं गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन तुम तो गुनहगार नहीं थे, मैं तो पकड़ा गया ना आज। तो इस तरह से सखी जो है जिसने कृष्ण को पकड़ा है वो बड़ी एकदम ऐसे उत्साह में है कि आज मैंने मेरे लक्ष्य को हासिल किया है, अब मैं इसको हाथ पकड़ के रंगे हाथ ले जाऊंगी यशोदा रानी के सामने और प्रस्तुत करेंगे, लो तुम्हारा खाना, देखो आज हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन लगा हुआ है हमारे घर का, पकड़ो इसको अभी, दंड दो इसको। इस तरह से यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे हाथ पकड़ा है, हाँ प्रभु जी दिखाओ हाथ आपका, ऐसे पकड़ा है हाँ, और जा रहे हैं तो जोरदार ऐसे चल के जा रहे हैं। तो सब बीच रास्ते में से गुजर रहे सब लोग ना, तो सब लोग हंस रहे हैं उनको, अभी सखियाँ जो हैं वो सखियों को पकड़े हुए हैं, और सब जितने भी घर हैं सब लोग हंस रहे हैं उनको, देखो देखो पकड़ा उनको पकड़ा। तो कन्हैया को बड़ा संकोच होता है, तो सखियों को तेरे सखी देखो सब लोग मुझे हंस रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत कम से कम तुम्हारी जो चुनरी है वो मेरे पे ओढ़ दो जरा, मतलब मेरा चेहरा किसी को नजर ना आ जाए। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारी सब मांगे पूरी कर देंगे, एक मांग पूरी नहीं करेंगे छोड़ने की, आपको बराबर थाने लगा देंगे आज। तो फिर वो उस पर चुनरी ओढ़ देते हैं, हाँ ढक देते हैं उसको, और फिर चल रहे जोरदार एकदम उत्साह से, अभी आपको मैया के पास भेज देंगे। तो फिर पकड़ो हाथ जरा, तो ऐसे कस के पकड़ा है ना हाथ उसका, बोले सखी देखो मेरा हाथ इतना कोमल है, मुलायम हाथ है, कमल जैसा कोमल है, इतना कसके पकड़ा है तुमने हाथ, दर्द हो रहा है बहुत, थोड़ा सा ढीला पकड़ो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ढीला पकड़ेंगे तो आप छोड़ के भाग के चले जाएंगे। नहीं ऐसा है कि मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ बदली कर सकते हैं आप, है ना, ये हाथ जो है ना वो हाथ पकड़ सकते, तो बीच में क्या होगा छोड़ देना हाथ मैंने, ऐसा वो हाथ देने के बीच में छोड़ दिया ना। तो कन्हैया बहुत चतुर हैं, वो क्या करते हैं जब वो चुनरी ओढ़ के चल रहे हैं तो उनके सखा भी कुछ हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, जो उस लीला में नहीं थे, वो भी हंस रहे हैं इसको इशारा करते हैं, और वो जो होता है ना वो कहते हैं आ जाओ, तो वो उसके बाजू में चलने लगते हैं, और बाजू में चलते 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 ये बात करते हैं कि जरा हाथ तो बदली करो। तो जब ऐसे मैं तो एकदम पूरा उत्साह में हूँ ना, एकदम उत्साह में उसको चल के ले जाता हूँ, ऐसे ये हाथ ऐसे छोड़ देता हूँ और वो हाथ पकड़ने के लिए आगे करता हूँ, तो किसी दूसरे का हाथ वो हाथ में दे देते हैं, वो चुंदरी के अंदर घुस जाता है बच्चा, हाँ चल रहे जोर से जोर, अरे वो लड़का आज चुप है एकदम, कुछ बोल नहीं रहा है, पीछे से कन्हैया जी खिसक के अपने भाग के अपने घर पहुंच जाते हैं। मतलब मैया बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत खिला आज, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जल्दी कुछ मक्खन खिलाओ। और मैया मक्खन खिलाती है बड़े प्रेम से, तो बहुत नींद आ रही है मुझे आज, बहुत थक गया। तो कन्हैया को गोद में सुलाते हैं अच्छी तरह से, फिर उसको बिस्तर में सुलाते हैं, कुछ देर में बहुत शोर उनको सुनाई पड़ता है, एकदम हल्ला मच रहा है, ए सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, क्या हो गया, आके मैया देखते क्या हो रहा है, सब गोपियाँ आज से किसी को चुनरी ओढ़ा के भाग भाग के आ रहे हैं। यशोदा मैया तो क्या बात है, लो आज तुम्हारे कन्या को रंगे हाथ पकड़ के लाया। बोला अच्छा कौन है ये, तो हमारे घर में हमने उनको आज इस तरह से पकड़ा है। बोले क्या है, अच्छा लाओ तो सही। तो आते हैं तो उतने में कन्या जाते, कौन शोर मचा रहा है मैया। बोला देखो वो देख रहे, अरे ये तो अभी मेरे हाथ में था, तो घर में कैसे आ गया। तो बोलते अरे यशोदा, कहती है उनको सखी, इतनी उत्साह से बोल रही हो, कन्हैया हाथ में, देखो कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं, हमेशा आप ऐसा ही करते हो, मेरे बालक को बेकार में टोकते हो, किसी और को पकड़ के लाए हो। तो चुनरी निकाल लेती है तो उसका देवर रहते हो, अरे अरे बेशरम तो क्या कर कम से कम। हाँ आज देवर को लेकर कल पति को लेकर आओगे, बोले कि देखो हमारा कन्हैया है। इस तरह से कन्हैया जो ताली बजा के हंसते हैं, पीछे से हंसते हैं। मैया बोलते हैं मैं तो आपके साथ में था, देखो आप गोद में सो रहा हूँ, मक्खन खा रहा हूँ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ आज, बहुत थक के। और फिर पीछे जाते हैं और फिर उसको हाथ दिखाते हैं, टेंगा दिखाते हैं। फिर यहाँ की जो लीला है वो ऐसी है कि ऐसे ही वो कई बार वो कोशिश करता है ठाकुर जी को पकड़ने का। तो एक बार ऐसे ही बंद कमरे में वही लीला है और पकड़ लेते हैं उनको, लेकिन पकड़ते ही वो सब लोग खिसकने लगते हैं। हाँ? क्योंकि वो ऐसा घटना होती है ना एकदम सो इंटेंस इवेंट कि उसमें वो तुरंत भागने का प्रयास करते हैं ना। तो इस बार क्या करते हैं ये लोग, जैसे ही वो झपक पड़ते गोपियाँ तो सबको छुड़ा कर एकदम ये क्या करते हैं तो गोविंदा खेलते हैं ना गोविंदा, एक के ऊपर एक चढ़ के उठ के खिड़की रहती है, खिड़की खोल के तुरंत सब लोग भाग जाते हैं खिड़की से, और सब लोग ऐसे एक एक करके चढ़ जाते हैं। और आखिर में वो होता है अपना फ्रेंड, क्या नाम है उसका, मधुमंगल। खिड़की बहुत छोटी है, सब लोग छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन ये ब्राह्मण का बालक है, लड्डू बहुत खाता है, इसका पेट वेट सब बहुत बड़ा है। तो सब लोग निकल जाते हैं और ये सब गोपियां भाग रहे हैं उनके पीछे पकड़ने के, सब लोग इतने झटपट झटपट निकल जाते हैं खिड़की से बाहर निकल के वहां से भाग जाते हैं। और ये आखिर मधुमंगल जो है ना वो जरा मोटा सा भी है और वो इतना भारी है कि उसको इतना भागने को नहीं आते, इसलिए वो लास्ट में जाता है कोशिश करने के लिए, लेकिन वो उसका पेट जो है ना वो खिड़की में अटक जाता है। ऊपर से हाथ है उसके और कन्हैया और बलदेव जी सब उसको खींच रहे हैं वहां से, और नीचे से गोपियां खींच रही हैं। और वो जो है ना ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जीत जाता है इसके अंदर, द ग्रेविटी विंस यू नो। वो नीचे से पांव खींच रहे हैं, ऊपर से हाथ खींच रहे हैं, बचाओ बचाओ करके पेट अटका हुआ है। मैंने कहा था मैं कम लड्डू खाया करो, लेकिन तुमने सुना नहीं। फिर उसको नीचे खींच लेते हैं और ऐसा सब गोपियां उनको पीटते हैं, इतना पीटते हैं, मुक्के मारते हैं, डंडा लगाते हैं, और वो चिल्ला रहा है कन्हैया बलुआ बचाओ बचाओ, और वो भी मधु चलो जल्दी भागो वगैरह, लेकिन वो आवाज़ जो बुलाने वाले की आवाज़ है वो धीरे धीरे कम कम हो जाती है, और इनकी आवाज़ वैसे जोर से अंदर बजती रहती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसका बहुत पीटते हैं उसको, बहुत पीटते हैं मधुमंगल को। मधुमंगल जो है ना वो सांदीपनि जी का बेटा है, सांदीपनि जी की माता जो है वो पूर्णमासी जी हैं, और उनका सांदीपनि जी कृष्ण भगवान के गुरु भी हैं, तो उनका बेटा है वो, तो वो ब्राह्मण है, तो बहुत रोता है वो, बहुत रोता है और बहुत परेशान हो जाता है। अचानक उसको याद आता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ बोलता है अब ब्राह्मण का अपराध करते हो, मैं अभी मेरा जनेऊ तोड़ के आपको शाप देता हूँ। ऐसा अपना एक बोलते हैं ना मराठी में ठेवणीतले अस्त्र, मुझे एकदम रिजर्व वेपन। वो बोलता है कि अभी मैं आपको शाप दूंगा, अभी ब्राह्मण यही तो वैश्य है ना, सभी गोपियां तो है दूध बेचती हैं, तो ब्राह्मण का बालक है, तो वो धर जाती है कि शाप देंगे तो भयंकर हो सकता है। तो वो एकदम मारना बंद कर देते हैं, माफ़ करना, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, मुझे माफ़ करना, अभी क्या करें आपको प्रसन्न करने के लिए। बोले बढ़िया लड्डू बनवाओ फर्स्ट क्लास। और सब लड्डू का ऑर्डर देता है बराबर से, इसके लड्डू उसके लड्डू, ऐसे मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू और खोए के लड्डू, बहुत प्रकार के लड्डू बनाओ। तो वो सब मधुमंगल को लेकर यहाँ पर आते, वो जो आसन दिख रहे हैं, आसन दिख रहा है ऊपर आपको, वहाँ पर उसको बिठाते हैं और उसको लड्डू खिलाते हैं, उसकी आरती करते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा भी देते हैं और बड़े सम्मान के साथ में उसको भेज देते हैं। ये यहाँ की लीला है। हाँ दसराज ठाकुर जी का जो माखन चोरी का जो खेल है वो अनंत लीला है उसके अंदर, अनंत लीला। एक बार ऐसे ही वो माखन चुराने जाते हैं तो फिर उनको गोपियाँ ऐसे पकड़ लेती हैं, तो कहते मैंने किधर माखन खाया, मैंने तो सही माखन खाया, तो ये जो हाथ में लग रहा है वो क्या है। तो ऐसा है ना कि वो मैंने देखा इतना बढ़िया माखन है, मैं उसको अवलोकन कर रहा था, मतलब देख रहा था कि आपने कितने प्रेम से उसको बनाया है, सोच रहा था मैं कि कितनी मेहनत की होगी गोपियों ने इसको बनाने के लिए। हाँ आपके मेहनत की मैं बहुत मन के मन में तारीफ कर रहा था, और मैं क्या देखता हूँ अचानक देख रहा हूँ कि उसके अंदर एक चींटी है, चींटी। मुझे लगा इतने कीमती मक्खन के अंदर चींटी जाएगी तो कैसे होगा, तो मैंने फिर चींटी निकालने को हाथ डाला उसके अंदर और चींटी को निकाल दिया। मैं ठीक है वो हाथ कब समझ गए तो मुँह में लगा उसका क्या, वो जब मैं ये चींटी निकालने का काम कर रहा था ना मेरे मुँह से एक चींटी गुजर रही थी ऐसी। अभी क्या करो, अभी मुंह में भी खुजली आ रही है, हाथ में जो हाथ मक्खन के अंदर है, तो उसी हाथ से मैंने फिर वो चींटी को निकाल दिया, तो मुंह को लग गया, मैंने खाया नहीं मक्खन तुम्हारा। ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन है जो इसमें बता दे कि ठाकुर जी कैसे उनको रिझाते हैं सब लोगों को। इस तरह से हम श्री वृंदावन धाम के इस दिव्य आनंद को लेने का प्रयास कर रहे हैं और ये आनंद को देवता लोग भी तरसते हैं यहाँ के आनंद को। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है सब लोगों की इस दिव्य आनंद में सहभाग लेने की? निरपेक्षता। ये जो ग्वाल बाल हैं, ये गोपियां हैं, ये भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, ये उनको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं बस। हमेशा मन में उनके एक ही विचार है। अभी सभी गोपियां जो है वो सब लोग माखन बनाते हैं, हाँ सब लोग कंप्लेन करते हैं हमारे घर में आके माखन चोरी करते हैं, लेकिन बनाते ही इसलिए है कि मेरे घर में आके ये चोरी करें। कभी कभी जानबूझ के रखते हैं ऐसे कि वो आके हमारे घर में चोरी करें। सब गोपियां जो मंथन करती हैं रोज एक ही सोचती हैं कि मेरे घर पे आज चोरी करने को आना चाहिए, ताकि मुझे कंप्लेन करने का मौका भी मिले, घर में जाने का मौका भी मिले। दिन भर उनके ही विचार में रहते हैं हमेशा। और जो कल लीला किया है उसको आज काव्य में गाते रहते हैं, जब मंथन करते हैं तो वो कल की लीलाओं का गीत गाते रहते हैं और आज की लीलाओं का इंतजार करते रहते हैं कि हमारे घर पे आएंगे। तो ये जीवन है कृष्ण भावना का, केवल कृष्णमय जीवन है, कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारे लिए मुमकिन नहीं, ये मत समझना हम कैसे, हमारा जो मन जो है ना वो हमारा मन 24 घंटा किसी न किसी विचार में मग्न रहता है। आप देखो सोच लो, हमारे मन में कभी भी विचार नहीं ऐसा होता नहीं है। तो हम भी समाधि अवस्था में हैं, लेकिन हमारे समाधि का विचार कुछ अलग है। अलग अलग प्रकार के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, लेकिन वो हमको पता नहीं चलता क्या चल रहा है। उनकी भी अवस्था समाधि की है, लेकिन उनके मन में केवल एक ही विचार चलता है, कैसे कृष्ण भगवान को संतुष्ट किया जाए। कृष्ण भावना इसी को कहते हैं। तो थिंक ऑफ कृष्णा, कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम मत नमस्कुरु। ये गीता का सार है एक्चुअली, कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, हमेशा मुझे दंडवत करो, मुझे प्रणाम करो, जो भी है मुझे अर्पण करो, मुझे नमस्कार करो, और इस तरह से तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। तो हम कहते कैसे सोचे उनके बारे में, तो फिर वो 11 अध्याय में समझाते हैं कैसे उनके बारे में सोचना है। और कहते हैं जब आप आकाश में देखते हो चंद्र और सूर्य, वो मेरी आंखें हैं। जब आप जल पीते हो तो रसो हम अपसुकौंतेया, जल का जो स्वाद है वो मैं हूं। जब आप पेड़ को देखते हो तो पेड़ों में जो ये अश्वत्थ का वृक्ष जो है, अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष, मैं हूं, ऐसे बताते हैं। प्राणियों में सिंह मैं हूं, फूलों में गुलाब मैं हूं, और फूलों का गंध मैं हूं, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह से वो समझाते हैं कि आपके जीवन में जो भी आप आम चीजें करते हो उसमें भी मुझे आप याद कर सकते हो। अगर आप जल पी रहे हैं, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको पता है कि इस जल का स्वाद श्री कृष्ण है, तो आप जल पीते वक्त उनको याद कर सकते हैं। अगर आप कोई जाते हैं घूमने के लिए, आप शेर को देखते हो, सिंह को देखते हैं, आप जान सकते हैं कि ये जानवरों में सिंह जो है वो भगवान कृष्ण है। इस तरह से और कहते हैं कि जो बलवान व्यक्ति है उसका बल मैं हूँ, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग। इस तरह से पूरा 11वें अध्याय में पूरा वर्णन है उनका, कैसे कैसे भगवान को हम अनुभूति कर सकते हैं उनकी। और इसी को कृष्ण भावना कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने यही कहा था, माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च, उसका मतलब क्या है, युद्ध भी करना है आपको तो नंबर वन मेरे लिए करना है और मेरी याद करके करना है। अब बोले बढ़िया, हम लोगों को मार भी सकते हैं उनकी याद करके, हाँ, लेकिन अर्जुन ने अपनी मर्जी से नहीं मारा था किसी को, भगवान के आदेश से, भगवान के आदेश के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने खुद की इच्छा होते हुए भी किया था। तो जब भगवान ने कहा था कर्ण को मारो, तो भी उन्होंने इच्छा नहीं की थी कर्ण को मारा जाए, वो तो उसके मन में खिलाफ थे उसके, कि नहीं अभी वो रथ से नीचे उतर गए, इनका पहिया फंस गया है, उन्हें शस्त्र है, जमीन पर है, मैं रथ में हूँ, उनके मन में बहुत सारे संकोच था उसके लिए। लेकिन जब भगवान ने आदेश दिया तो अपना विचार बाजू में रख के भी उन्होंने कर्ण का वध किया। इसका मतलब महाभारत में पूरा जो उन्होंने किया वो केवल कृष्ण भगवान के आदेश से किया, लेकिन भगवान उनको आदेश देते हैं कि इसमें भी आप योग साध्य कर सकते हो। माम अनुस्मर युद्ध्य च, मुझे याद करके मेरे लिए ही आप युद्ध करोगे तो मुझे के प्राप्त हो जाओगे। इसलिए इतना कमजोर पार्टी होने पर भी धर्म का पालन करने की वजह से पांडव विजयी हो गए। तो हमारे लिए भी यही टेस्ट है, जो भी हम करते हैं इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं करने के लिए, लेकिन वो करने समय भगवान की याद करके उन्हीं के लिए कार्य करना है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक है कर्म जो ड्यूटी कहते हैं उसको, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जैसे कोई माता है तो उसको बच्चे को देखना है, कोई पत्नी है तो पति को सब सेवा करना है, कोई पति है तो पत्नी की सेवा करनी है, कोई अध्यापक है तो विद्यार्थियों की सेवा करनी है, कोई अगर सामाजिक नेता है तो समाज की सेवा करनी है, राजा है तो प्रजा की सेवा करनी है, हर एक अपना अपना कर्तव्य होता है। बालक है तो पिता की सेवा करनी है, माता की सेवा करनी है। और दूसरा होता है विकर्म, जो करना नहीं चाहिए। चार प्रकार के भयंकर विकर्म बताए गए हैं, बहुत सारे मामूली भी हैं, लेकिन चार जैसे कि स्तंभ यानी कि पिलर्स ऑफ सिंस, मांसाहार, नशा करना, जुआ खेलना और व्यभिचार करना, जिसको विकर्म कहा गया है। और झूठ बोलना, लोगों को चीटिंग करना, ये भी विकर्म है, लेकिन ये छोटे मोटे विकर्म है। लेकिन ये चार जो है वो महत्पाप कहे गए हैं, इनको नहीं करना। और एक होता है अकर्म। अकर्म का मतलब क्या है? वो कर्म करना जिससे केवल भगवान को संतुष्टि हो। अकर्म करने से कर्म के बंधन जो है वो छूट जाते हैं। कर्म करने से उसका फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त करने के लिए फिर दोबारा जन्म देना पड़ता है, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो। तो कर्म करने से बंधन कर्म फल का हो ही जाता है। अगर आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो बहुत अच्छे कार्यों का फल भोगने के लिए आपको दोबारा माता के गर्भ में जन्म देना पड़ेगा। अभी कर्म किए तो उनके कर्म भोगने के फल भोगने के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा और कहीं जाना पड़ेगा, या तो निचली योनि में जन्म देना पड़ेगा। लेकिन अकर्म वो एक्टिविटी है जो करने से, आम एक्टिविटी है वो, खाने पीने की, चलने के, काम करने की, लेकिन वो हम भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे तो हम उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उसको कहते हैं भक्तिपूर्ण सेवा, डिवोशनल सर्विस। आप अध्यापन भी कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब जब भगवान की संतुष्टि के लिए अपना जीवन समर्पित होता है, हर सांस जब भगवान को अर्पण करते हैं, तो हमें कोई भी कर्म का फल बांध नहीं सकता है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ा पहला जो अकर्म है वो है भगवान के नाम का जप। भगवान के नाम का जप करने से जो भी हमारे बंधन है वो सब छूट जाते हैं, हम विमुक्त हो जाते हैं, सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के नाम के जप में बीज रूप से कर्म के बंधन को तोड़ने की शक्ति है। इसलिए हम लोग कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें से बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में पहले भर्ती हो गए थे, फिर डिस्चार्ज हो गए, ऐसे मरीज हैं हमारे। अभी तो मरीज नहीं है, अभी तो स्वस्थ हैं वो, उनके रिश्तेदार भी है, फैमिली मेम्बर्स भी हैं। इसमें बहुत सारे लोग यूके या लंदन से आए हुए हैं, बहुत सारे बॉम्बे से आए हैं और अपने रिश्तेदारों को लेकर आए हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, वो अपने माता पिताओं को, सास ससुर को लेकर आए हैं। ये एक ऐसा कार्य है कि हमको वो करना चाहिए, क्योंकि सब लोग, हम लोग इस दुनिया में बंधन में फंसे हुए हैं, है ना। शरीर के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, गुणों के माध्यम से, आप कहिए सत्वगुण, रजगुण, तमगुण और कर्म के फल के बंधन में सब लोग फंसे हुए हैं। और निरंतर जन्म जन्मांतर तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हम लोग, ये समझना बहुत जरूरी है। और जितना हो सके, जितने अधिक लोगों को हो सके, इसका बोध देना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। और ये जानकारी बॉम्बे में दे सकते हैं, लेकिन बॉम्बे में लोग बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं रहता उनके पास। काम से आते हैं सत्संग में और काम पे चले जाते हैं, वहां से बीच में एक घंटा भी काम के बारे में सोचते रहते हैं, सत्संग चलते रहता है, देखते घड़ी की ओर अभी मीटिंग है। इस तरह का बंधन रहता है। यहाँ पे आने से क्या होता है, आप लोग सब छोड़ के आए आराम से, अभी कोई किसी को मीटिंग नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल भगवान के विषय में आपको केंद्रित करने के लिए मन, माइंड फ्री है अभी आपका। इसलिए यात्रा में आना है, ताकि कुछ समय क्यों ना हो साल में एक्सक्लूसिव भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए, सोचने के लिए, सुनने के लिए, बैठने के लिए, उसी के रूप में काम करने के लिए, दान देने के लिए, धाम में सेवा करने के लिए हमको जाना चाहिए। क्योंकि बाकी सब प्रपंच दिन भर चलते रहता है, साल भर चलते रहता है। ऐसे भी कहा गया है कि प्रपंच जो है अपने आप होते रहता है। देखो आप देखते हैं ना, अपने घर में बच्चे पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर SSC होते हैं, फिर 12th होते हैं, फिर कुछ ना कुछ पेशा का पढ़ाई कर लेते हैं, धंधा भी चालू कर देते हैं, नौकरी करने लगते हैं, एक मिनट लगा, और फिर शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं, फिर उनकी शादी होती है, ऐसे अपने आप होते रहता है। वो कष्ट होता है लेकिन अपने आप होते रहता है। तो ऐसे कहा गया कि प्रपंच जो है वो समय के साथ में होते रहता है, लेकिन जो परमार्थ है, पद्मा आध्यात्मिक जीवन जो है वो अपने आप नहीं होता है, उसको सोच समझ के प्रोएक्टिवली करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है वो। क्योंकि भौतिक दुनिया का जो रास्ता है वो उल्टी तरफ है, भगवान की ओर नहीं है। और भगवान की ओर जाना तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। इस लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, नदी के प्रवाह के उल्टा बहने के लिए अपने आप नहीं हो सकता, आप खड़े रहेंगे पानी में तो नदी के साथ चले जाएंगे। आपको अगर इस दिशा में जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम अगर खड़ा रहना है एक जगह पर तो आपको कम से कम हाथ चलाने पड़ेंगे। तो हम लोग सब लोग कर्म के बंधन के मारे नदी के प्रवाह में जा रहे हैं, समय के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। कहाँ बहते जा रहे हैं? मृत्यु के स्टेशन तक। एवरीबडी इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन विदाउट फेल, कोई इस गति को रोक सकता नहीं है। जन्म के बाद में ये प्रक्रिया जो है आरंभ होती है मृत्यु के स्टेशन तक चलने की, और सब लोग बिल्कुल स्टडी स्पीड से, हाँ न जानते हुए भी एकदम वेरी स्टडी स्पीड से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, और हम लोग कोई सोचते भी नहीं उसके बारे में। वी आर ऑल एंजॉइंग अवर लाइफ, नो नाइस नाइस स्मॉल चिल्ड्रेन अर्निंग मनी फैमिली एवरीथिंग इज नाइस। अचानक एक दिन कोई आदमी मर जाता है, फिर लोग एकदम चमक चौंक जाते हैं और जाते हैं उनको पहुंचाने के लिए, फिर सोचते हैं अरे जीवन कितना नश्वर है, क्या जीवन में है, आज है कल नहीं है, और उनको जला देते हैं, घर आके स्नान करते हैं, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। स्मशान वैराग्य, स्मशान में शक्ति होती है, जब तक आप वहां रहते हो ना बड़े वैराग्य रहते हो, क्या है कोई किसी का नहीं है, ये धन में क्या अर्थ है, कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब नश्वर है, सब जाने वाला है, ये सब बेकार है, सब छोड़ देना चाहिए, भगवान में शरण जाना चाहिए। कब तक? घर में आके स्नान करने तक, उसके बाद में अपना काम चालू दोबारा पूरे जोश के साथ उत्साह के साथ, ऐसा है। सबको जाना है, याद रखना। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो उसको अगर एक बार कुछ अनुभूति होती है तो उसको पकड़ के रखता है, वो छोड़ता नहीं है उस अनुभूति को, वो जाने देता नहीं। अगर उसको अनुभूति हो गई है कि जीवन नश्वर है तो उसका विचार बना रहता है वैसे ही, उसके लिए खोजते रहते हैं कैसे इससे छुटकारा पाना है। वो देखता है जब कोई मर रहा है तो खुद देखता है कि मैं भी मरूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा आ जाऊं यहां पर धक्के खाने के लिए। वो सोचता है कि मैं भी कुछ कर लूं ऐसा इंतजाम कि जब मैं मरूंगा तो दोबारा इस लौट के इस माता के गर्भ में वापस जन्म देने के लिए और शरीर धारण करने के लिए नहीं आऊंगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। वही बुद्धि का प्रथम लक्षण है, जो सोचता है कि मुझे इस बंधन से निकलना है, और उसके निकलने के लिए एक ही सहारा है, वो भगवान का है। बाकी सारे सहारे झूठे हैं, पैसे का सहारा, लोगों का सहारा, मित्रों का सहारा, धन का सहारा, बुद्धि का सहारा, विद्या का सहारा, हाँ सब सहारे जो हैं समय के साथ टूटते हुए नजर आते हैं। कोई सहारा टिकता है क्या? मृत्यु आ रही है तो सब सहारे कुछ नहीं कर सकते हैं, रो सकते हैं आपको देख के, लेकिन वो मरने वाले मर जाते हैं। सब प्रेमीजन साथ में हैं, सब रो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्रभावी समय का ऐसा है, भगवान कहते हैं कालोस्मी, मैं काल हूं, काल के रूप में मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं, हर व्यक्ति से जिस चीज का व्यक्ति गर्व करता है वो सब वस्तु मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। हमारे बचपन में मोहम्मद अली बॉक्सर हुआ करते थे, वो इतने तेजी से बॉक्सिंग करते थे कि उनका हाथ दिखाई नहीं पड़ता था। आप कोई हुआ ना तो अपना होता ना स्विंग की मशीन, टेलरिंग मशीन, वो जब फास्ट चलती है तो आपको सुई नजर पड़ जाती है, सुई दिखती नहीं है, वो इतनी फास्ट चलती है वो कि आपको वो सुई नजर नहीं आती है। उसी तरह से वो बॉक्सिंग करते थे, उनका हाथ कभी दिखता नहीं था, कब मार रहे हैं, कब पीछे आ रहा है, कब आगे जा रहा है। लेकिन आज वो ऐसी अवस्था में है कि उनको एक ग्लास भी उठता नहीं हाथ से उनके, क्योंकि वो मुक्के मार मार कर उनके दिमाग के अंदर जो है ना कोऑर्डिनेशन सब खत्म हो गया है। आज एक ग्लास भी आपके हाथ से उठा सकते नहीं हो, मतलब वो शक्ति जो उनके पास में थी वो समय के साथ में खत्म हो गई। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको एंड में क्या होता है? अल्जाइमर्स डिसीज, डिमेंशिया, अपना नाम भी याद नहीं आता। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, इतना इतना बड़ा सिद्धांत बनाया, पीएचडी, डबल पीएचडी, डीएससी, डॉक्टरेट सब किया, लेकिन एंड में जब 50, 60, 70 साल हो गए तो ऐसा रोग हो गया कि सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। तो क्या मतलब है सब चीज का, किस पर गर्व करना है? एवरीथिंग इज गोइंग टू गो 100%। इसलिए जब हमको ये पता चलता है उसी समय से हमको भगवान की भजन में समर्पित होना चाहिए। लोग कहते हैं अरे इतने जवान हो अभी क्यों भक्ति कर रहे हो, ये तो हंसने खेलने के दिन है, ऐसे बोलते हैं। आप लोग भी बोलते होंगे अपने बच्चों को, अरे ज्यादा भक्ति मत करो, ये तो अभी अपने हंसने खेलने के दिन है। लेकिन जब बूढ़े होते हैं, मेरे पिताजी की मुझे याद है, जब मैं इसमें आया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये समय नहीं है भक्ति वक्ति करने का, अभी तो अच्छी तरह पढ़ाई वढ़ाई करो, अच्छी तरह से धन कमाओ, 100 रुपये कमाओ, 90 रुपये दान दो, लेकिन 100 रुपये पहले कमाओ। मुझे काफी टोकते थे पहले, लेकिन जब मृत्यु के समय पे आए तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियली मुझे बताया, जब एकदम बूढ़े हो चुके थे वो, बहुत बीमार थे, मुझे बताया कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मेरे कर्तव्य से मुक्त होकर तुम लोगों को पढ़ा वढ़ा कर बाद में फिर मैं बहुत भजन करूंगा। लेकिन आज मेरी ऐसी अवस्था है, शरीर की, रोग की, शरीर की, मन की ऐसी अवस्था है कि मैं बिल्कुल भजन नहीं कर सकता। अब मुझे यकीन हो रहा है कि अगर मैं उस जमाने में करता होता तो वही जो आदत लगी हुई है वो मुझे आज काम आती। यू कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग्स, होता है ना, ऐसे कहावत है इंग्लिश में कि जब कुत्ता पिल्ला छोटा होता है तभी आप उसको कुछ भी सिखा सकते हो, नए नए ट्रिक्स सिखा सकते हो, लेकिन बार बूढ़ा हो गया तो उसको कुछ नहीं सिखा सकते। उस तरह से हम जब छोटे होते हैं तो हमारा मन भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उस समय जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम आत्मसात करते हैं, वही हमें अंत में काम आता है। जो जीवन भर किया है वही अंत में काम आता है। अगर जीवन भर पैसा कमाया है, जीवन में अगर और कुछ काम किया है तो वही हमको एंड में उसकी गति रहेगी। लेकिन जीवन भर भजन किया है तो ही आपको एंड में भजन कर सकते हैं। तो ये मत समझना कि हम जवानी में एकदम पूरा समय अपना अच्छी तरह से कर्तव्य को निभाते हुए करेंगे और एंड में हम भगवान का भजन करेंगे। मतलब क्या हुआ, जो सबसे फ्रेश था वो अपने लिए आपने यूज किया, जब वो ओल्डर बासी हो गया तो भगवान के लिए अर्पण किया, ये भगवान का प्रेम नहीं हो सकता है। आप अपने जीवन के बेस्ट में थे तो आपने इंद्रियों के भोग के लिए उसका इस्तेमाल किया, पूरी शक्ति बुद्धि और विज्ञान ज्ञान का सब इस्तेमाल उसके लिए किया और सब शरीर एकदम टकाऊ हो गया, बेकार हो गया, कुछ काम करने रह गया, और अभी भजन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरे पिताजी ने बताया मुझे कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, इस उम्र में करोगे तो आपको उस उम्र में काम आएगा, मेरी उम्र में काम आएगा, ऐसा बताया उन्होंने। और कुछ ही दिन में उनके प्राण निकल गए। तो अभी वो उस वक्त अनुभूति आके क्या लाभ है उसका, समय तो लौट के नहीं आता ना वापस, समय तो गया, आपने अनुभूति जरूर किया लेकिन समय तो निकल गया अपने हाथ से। इसीलिए जिस वक्त पता चलता है उस वक्त से अपने जीवन को भगवान की भक्ति में अर्पण करना चाहिए, भले देर से क्यों ना हो, जब तक हमारी चेतना जागरूक है तब तक भगवान के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहिए। सारे प्रपंच उनकी कृपा से होते रहेंगे। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा कर रहे हैं, सब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अपने अपने कर्मों के अनुसार सब लोगों का लालन पालन होते रहता है भगवान की इच्छा से। हमको केवल करना है भजन भगवान का, और जो भी कर्तव्य है उसको अच्छी तरह करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भागना चाहिए उससे। लेकिन अपना जैसे चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि इस तरह से रहो जिस तरह से लगे कि आप दुनिया के हो, लेकिन मन से ऐसे रहो कि आप दुनिया के न रहो। समझ में आपको आया, यीशु क्रिस्त ने भी ऐसा ही कहा है, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के बन के मत दुनिया में मत रहो, दुनिया में रहो शरीर से लेकिन मन उनमें लगाओ। एक उदाहरण देते हैं उसका चैतन्य महाप्रभु स्वयं, रघुनाथ दास गोस्वामी राजकुमार थे और रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत विरक्ति थी, भगवान के भजन में रुचि थी, तो उसको उनको बार बार वो बांधते थे घर में कि भाग ना जाए कहीं संन्यास लेने के लिए, क्योंकि उसको राजपाट संभालना था उसको। तो चैतन्य महाप्रभु को वो खत लिखते हैं कि ऐसे ऐसी मेरी अवस्था है, तो उनका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, ही गिव्स अ सिग्नल टू हिम, एलेगोरिकल सिग्नल, डायरेक्टली बताते नहीं क्या करना है। वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा है कि कोई अगर विवाहित स्त्री है और उसका किसी और व्यक्ति से प्रेम है, तो वो क्या करती है, अपना घर का काम बहुत अच्छी तरह से करती है, बहुत ही अच्छी तरह से करती है, लेकिन उसके मन में हमेशा वही विचार रहता है कि उसको कैसे मिलूं। तो घर में इस तरह से काम करते हैं, घर में किसी को डाउट भी नहीं आता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, मतलब घर में सब शांत है फिर उसको जाकर मिलती है। उसी तरह से अब जब तक दुनिया में रहोगे तो सब काम इस तरह से करो कि बिल्कुल दुनिया के हो, लेकिन मन जो है अपना चित्त जो है वो भगवान पे लगाओ। जैसे कोई स्त्री है, उसका पति अगर परदेश में काम करने गया है तो वो घर में खाना भी बना रही है, बच्चों को भी देख रही है, उसका पति की याद हमेशा मन में बनी रहती है उसके, सब काम कर रही हो। और एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं, अगर आपके घर में कोई बालक है समझो, और बालक आपको उसको आपने खाना पीना खिला के सुला दिया है अच्छी तरह से, वो सो रहा है, फिर आप उन्हें तुरंत बर्तन मांजते हो, कुछ साफ सफाई करते हो, कपड़ा धोते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपका जो मन है और आपका कान जो है उसके आवाज में एकदम लगा रहता है, जैसे इसको आँ करेगा तो तुरंत आप सब कुछ बंद करके भागोगे उसके लिए। सब कुछ कर रहे हैं आप, कितना घंटा बालक सो रहा है, सब कुछ आप काम करते रहते हैं, लेकिन आपका मन और जो चेतना जो है आपकी कॉन्शियसनेस वो बालक की ओर रहती है। जैसे ही उसकी आवाज आई हिलने की थोड़ी सी, सब कुछ बंद करके आप तुरंत उसके बाद भागते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मन हमेशा उस पर ही है, बालक पर, आपका शरीर से आप काम कर रहे हो लेकिन मन आपका उस पर लगा हुआ है, उसी तरह से इस दुनियादारी में सब कुछ कर्तव्य को निभाते हुए मन जो है वो कृष्ण में लगा कर रखना चाहिए। वही व्यक्ति जो है अंत में मृत्यु के समय भगवान को याद करने में सफल हो जाता है। अल्टीमेटली क्या भगवान ने बताया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। शरीर को छोड़ते वक्त अगर मुझे याद करोगे तो मुझे को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन जीवन भर किसी और को याद करोगे तो अंत समय में उनकी याद नहीं आएगी। जीवन भर उनकी याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जीवन भर दिन भर कुछ घंटे के लिए क्यों हो, अगर हरी बोल बच्चों को जरा संभालो गिर सकते हैं, जीवन भर अगर आप भगवान के नाम लेने का प्रैक्टिस करोगे तब जाके अंत में आपको भगवान के नाम की याद आ सकती है। गारंटी नहीं है, आपको प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए और एक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कुछ चुभा कुछ दुखा तो तुरंत कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय बहुत दर्द होने वाला है, तो छोटे मोटे दर्द में अगर याद करने की प्रैक्टिस की तो बड़े दर्द में उनको याद कर सकते हैं, बड़े दुख में उनको याद कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस का मामला है, साधना भक्ति मतलब ये प्रैक्टिस एवरीडे। तो युद्ध करते हैं ना सैनिक लोग, उनका युद्ध तो 15 साल में एक बार भी नहीं होता, लेकिन रोज प्रैक्टिस करते हैं, गोली चलाते हैं, बॉम्ब चलाते हैं, हैंड ग्रेनेड डालते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि जब युद्ध आएगा तभी वो उस दिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, साल भर जो प्रैक्टिस किया है वही काम आएगी उनको एंड में। उसी तरह से हमको भी अपने जीवन भर में जब सब कुछ अच्छा है, इंद्रिय स्वस्थ है, तब तक हमको भगवान की याद करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। राजा कुलशेखर जो है एक संत हुए मद्रास में, वो कहते हैं प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधव स्मरणम कुतस्ते। अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, सब कुछ मन सही है, सब धनवन सब अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, तो अभी मुझे आपका विचार करना चाहिए, आपके बारे में भगवान के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि जब प्राण निकलने का समय आएगा तो कफ वात पित्त मेरे कंठ में आके ऐसे जम जाएंगे, तो मैं कैसे आपको याद कर सकूंगा, ऐसे भयंकर अवस्था में मैं आपको याद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे आज ही याद करना पड़ेगा, आज ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके अंत में मेरा कल्याण हो सकता है। इसलिए आप सबको, बारिश आ रही है, विनती करता हूँ कि आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिए भगवान को याद करने का। बारिश आ गए तो आपका ध्यान बारिश में गया, भगवान के ऊपर से उड़ गया, है ना, इतनी दो बूंदे पड़ रही है, थोड़ी गोवर्धन के ऊपर वर्षा हो रही थी वैसे हो रही है, ऐसे नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय।